नमस्कार भारत, तारीख 20 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में कई गवाहों ने ट्रंप पर यूक्रेन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए।
These hearings are not designed to uncover new information. They're meant to showcase a hand-picked group of witnesses.
झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने चुने अलग अलग रास्ते।
भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार रही है और ऐसे ही आरोपियों को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं उनको प्रत्याशी बनाते हैं।
राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम बच्चे सीख रहे हैं संस्कृत।
मम नाम आनिया, मम पितुर नाम एहसान, मम मातुर नाम शबाना, मुझे संस्कृत पढ़नी अच्छी लगती है।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। अमरीकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई जारी है। वरिष्ठ अमरीकी सुरक्षा सलाहकार ने ट्रंप पर उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने और अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सुनवाई को एक तरह का कंगारू कोर्ट और एक तरह का छल बताकर खारिज कर दिया है। अगले महीने होने वाले आम चुनाव के अभियान की पहली टेलीविजन बहस के दौरान ब्रिटेन के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच ब्रेग्जिट के मुद्दे पर कई बार तीखी टक्कर हुई। कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हफ्तों के अंदर संसद से ब्रेग्जिट डील पास कराने और यूरोपीय संघ को जनवरी के आखिर तक छोड़ने का वादा किया। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने उन पर अमरीका और ड्रग्स कंपनियों के तो ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को बेचने की योजना बनाने का आरोप लगाया। जॉनसन ने इन आरोपों को खारिज किया है। जेरेमी कॉर्बिन ने बोरिस जॉनसन को ब्रेग्जिट समझौते को लेकर किए गए उनके वादे और स्वास्थ्य योजना पर कई बार घेरा।
Really, Mr. Johnson, you are going to embark on probably 7 years of negotiations.
वास्तव में जॉनसन, आप शायद एक व्यापार सौदे के तहत अमेरिका के साथ अगले 7 सालों तक का समझौता शुरू करने जा रहे हैं। आपने पहले भी ये संकेत दिया है कि आप हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को अमेरिका के साथ इस व्यापार सौदे के तहत जोखिम में डाल रहे हैं। आपने पहले ये भी संकेत दिया है कि आप कनाडा की तरह का एक समझौता करेंगे जिसमें बातचीत करने में लगभग 7 साल लगे, इसलिए आप इसे कुछ महीनों में कभी भी पूरा नहीं करा पाएंगे और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये थे विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने हांगकांग में अधिकारियों से विश्वविद्यालय परिसर में घेराबंदी को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की अपील की है। अनुमान है कि लगभग 100 प्रदर्शनकारी पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के अंदर हैं जिसे रविवार से पुलिस ने घेर रखा है। सैकड़ों लोग पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अंदर मौजूद कुछ लोगों ने सीवर के रास्ते से भागने तक की कोशिश की है। जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने इस घेराबंदी को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की अपील की है।
With regard to the current situation at the Hong Kong Polytechnic University,
हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि वो इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वो सब करें जो मुमकिन है। वो जो लोग अंदर हैं उनकी स्थिति को मानवीय तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश की जानी चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रॉबर्ट कोलविले के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि वो ईरान को लेकर उन रिपोर्टों की पुष्टि कर सकती है जिसके अनुसार 5 दिनों से हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान 106 लोग मारे गए हैं। लेकिन संस्था का यह भी मानना है कि मरने वालों की जो संख्या है वो वास्तविक रूप में कहीं ज़्यादा हो सकती है। बोलिविया के एक एल अल्टो शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 3 लोग मारे गए हैं, 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस और सेना ने पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों पर गोलियां चलाई हैं। बीबीसी समाचार।
बी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई जारी है। वरिष्ठ अमरीकी सुरक्षा सलाहकार सहित कई गवाहों ने ट्रंप पर उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडन की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए बयान दिए हैं। हालांकि ट्रंप इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सुनवाई को एक तरह का धोखा बताकर खारिज किया है। यूक्रेन में पूर्व अमरीकी विशेष दूत कर्ट वोल्कर ने भी अपने बयान के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। सुनिए कि महाभियोग की सुनवाई के दौरान कौन सी बातें रखी गई। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा सार सुनिए सृष्टि श्रीवास्तव से।
अमरीकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई हो रही है। अमरीकी राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया। अमरीकी राष्ट्रपति इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। एक वरिष्ठ अमरीकी सुरक्षा सलाहकार ने ट्रंप पर उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन की जाँच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने और अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विनमैन ने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन में अपने समकक्ष के साथ फोन कॉल में जो कुछ कहा वो उसे लेकर बेहद चिंतित हुए थे। यूक्रेन में पूर्व अमरीकी विशेष दूत कर्ट वोल्कर ने कहा कि ट्रंप के निजी वकील रूडी ग्यूलानी की ओर से यूक्रेन से रिश्तों में नकारात्मक तरीके से हस्तक्षेप किया गया। सार्वजनिक गवाही में अपनी बात रखते हुए वोल्कर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऊर्जा कंपनी बरिस्मा, जहां बाइडेन के बेटे निदेशक थे, उस पर जांच की मांग और ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी की जांच व्हाइट हाउस के लिए इस तरह से जुड़ी हुई थी। वोल्कर ने कहा कि ना तो वो इस बात से कभी अवगत थे, ना ही उन्होंने कभी भी यूक्रेन से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बेटे की जांच करने को कहा।
At no time was I aware of or knowingly took part in an effort to urge Ukraine to investigate former Vice President.
मुझे कभी भी यह पता नहीं था और ना ही मैंने कभी भी जानबूझकर यूक्रेन से पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन की जांच कराने का आग्रह करने की कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो भी दस्तावेज पेश किए हैं उससे साफ पता चलता है कि उपराष्ट्रपति जो बाइडेन कभी भी उस पे चर्चा का विषय नहीं थे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच जुलाई 25 की फोन कॉल पर था। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उपराष्ट्रपति बाइडेन या उनके बेटे के किसी भी संदर्भ के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, जब तक कि उस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट 25 सितंबर को जारी नहीं हुई। ये थे यूक्रेन में पूर्व अमरीकी विशेष दूत कर्ट वोल्कर के शब्द। वहीं व्हाइट हाउस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सुनवाई को एक बार फिर कंगारू कोर्ट और एक तरह का छल बताकर खारिज किया है। दूसरे सत्र की शुरुआत में अपना बयान देते हुए समिति के शीर्ष रिपब्लिकन डेविन न्यून्स ने महाभियोग की सुनवाई की आलोचना की।
These hearings are not designed to uncover new information.
ये सुनवाई नई जानकारी को उजागर करने के लिए नहीं की जा रही है। असल में इसमें उन गवाहों को ही सामने लाया जा रहा है जो कि डेमोक्रेट्स द्वारा ही चुने गए हैं और वो अपने अनुसार कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। ये थे समिति में शीर्ष रिपब्लिकन डेविड न्यून्स के शब्द। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति का उत्पीड़न करने के लिए हो रही है। अमेरिका के इतिहास में चौथी बार महाभियोग की सुनवाई हो रही है। तीसरी बार इसकी कार्रवाई को टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है।
तो जैसा कि आपने सुना, अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जाँच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई जारी है। वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों ने के कई गवाहों ने ट्रंप पर उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया हुआ है बयान दिए हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। झारखंड विधानसभा चुनाव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है। इसकी सभी सहयोगी पार्टियां अलग अलग रास्तों पर चल चुकी हैं। एनडीए की मुख्य सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने संकेत दिए हैं कि पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू पार्टी पहले से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी देकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। ऐसे में क्या है विभिन्न पार्टियों की रणनीति और किस मुद्दे पर हो रहा है प्रचार, सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा का चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में ही रोचक हो चुका है। इस चुनाव में न केवल दलीय मर्यादाएं टूट रही हैं, बल्कि विभिन्न गठबंधनों का स्वरूप भी दांव पर लग गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी राजद जहां गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अकेली पड़ चुकी है। झारखंड में पिछले 19 सालों से साथ रही आजसू पार्टी ने पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अब जदयू ने संकेत दिए हैं कि जमशेदपुर पूर्वी सीट पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सरयू राय के चुनाव प्रचार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जमशेदपुर आ सकते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने रांची में मीडिया को यह जानकारी दी।
सरयू राय जी उम्मीदवार हैं, वो अगर जरूरत महसूस करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, और तब जब वो आग्रह करेंगे तो हम सब लोग उनसे आग्रह करेंगे जमशेदपुर में जाके उनको सरयू राय जी के समर्थन में मीटिंग सभा करनी चाहिए और वोट मांगना चाहिए। 5 वर्षों तक सरकार में रहने के बावजूद वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हो और उसका टिकट आप काट दी, तो उन्होंने फैसला किया कि सांकेतिक रूप से वो चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। जनता दल यूनाइटेड इस कदम का स्वागत करती है, समर्थन करती है।
इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि उन्हें किसी के आने जाने या अपने खिलाफ उम्मीदवार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बुनियाद विकास पर टिकी है। रघुवर दास ने कहा,
आदिवासी के बच्चे बच्चियां मुर्गी पालने के लिए नहीं पैदा, उसका बच्चा भी डॉक्टर बने इंजीनियर, तो इस झारखंड की जनता लूटने किसी को नहीं ली, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का जनादेश आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी 3.25 करोड़ जनता देगी।
इस बीच झारखंड विकास मोर्चा ने घोषणा की है कि पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले के धनवार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वे 22 नवंबर को अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारी आरपीएन सिंह ने बीजेपी के कई उम्मीदवारों पर दागी होने के आरोप लगाए हैं।
भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार रही है और ऐसे ही आरोपियों को टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं उनको प्रत्याशी बनाते हैं, 100 करोड़ से ऊपर दवाई के घोटाले के आरोप लगते हैं उनको प्रत्याशी बना दें।
विपक्षी महागठबंधन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद झारखंड के लोगों को ठेकेदारी में भी आरक्षण दिया जाएगा।
राज्य के अंदर 100 करोड़ 50 करोड़ तक का ठेका लेने वाला कोई झारखंडी नहीं है, सब यूपी बिहार का आदमी मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ का मिलेगा, गुजरात का मिलेगा। हमने ये भी निर्णय लिया है सरकार बनेगा तो इस राज्य के अंदर 25 करोड़ का जो भी ठेका टेंडर निकलेगा वो सब झारखंडियों को मिलेगा।
इस बीच भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए लोहरदगा आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले सप्ताह झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड के सियासी गलियारे में गर्माहट का माहौल है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
भारत में मोबाइल इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम हैं। यहाँ पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भी सस्ता मोबाइल डाटा मिलता है, मगर आने वाले वक्त में भारतीय ग्राहकों को इसी डाटा के लिए ज़्यादा रकम चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि राजस्व के आधार पर आधे से ज़्यादा बाजार पर नियंत्रण रखने वाली 2 कंपनियाँ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। ये कंपनियाँ डेटा का दाम क्यों बढ़ा रही हैं, किस हद तक की कीमत बढ़ेगी और उसका आम आदमी पर क्या असर होगा, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की टेलीकॉम और कॉरपोरेट मामलों के विशेषज्ञ आशुतोष सिन्हा से।
कई कंपनियों के टेलीकॉम सर्विस में रहने के कारण जो कंपटीशन था उनके बीच, उसके कारण ये कीमतें गिरी थी। यहाँ पर ग्राहकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कंपनियां नए ग्राहक के लिए कुछ समय तक के लिए नुकसान सहकर भी ये ग्राहक अपने साथ रखना चाह रही थी। वो समय अब खत्म हो गया, क्योंकि एक बार अगर आपको वो ग्राहक मिल गए तो वो छोटे पैसे खर्च करते हैं, महीने के शायद 100-150-200 रुपए ही खर्च करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि आपकी कमाई बहुत अच्छी होती है। तो वो दौर अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब कंपनियां बची बहुत कम है, इसलिए अब लगता है ये कीमतें बढ़ना, टैरिफ बढ़ना बिल्कुल लाजमी है।
अब हम ये देखें कि इससे आम आदमी पे कितना असर पड़ेगा, यानी कि हम इस तरह से समझना चाहेंगे कि मान लीजिए डेटा पे मेरा खर्च आता था 200 रुपए महीने का, अब मुझे कितने देने पड़ सकते हैं?
तो देखिए ये जो संख्या होगी ना ये फिलहाल बहुत छोटी होगी, क्योंकि आप अचानक 15-20% नहीं बढ़ा सकते, तो कंपनियों का अलग अलग विकल्प है। डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट के बारे में ये प्लान कर रही है। मोटे तौर पर आपको एक नंबर बताऊं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखती है टेलीकॉम कंपनियां, हर महीने एक एवरेज टेलीकॉम यूजर जो है करीब 150 रुपए से कम खर्च करता है, तो वो उनको कहें कि आप ना 100 रुपए चूंकि आप खर्च करते थे, आप 120 रुपए खर्च कीजिए तो हम आपको दुगना कर देंगे डेटा। तो उससे आपको 20% आपकी कमाई भी ज्यादा होगी एज ए कंपनी, और डेटा का खर्च एडिशनल इतना नहीं होता है कि कंपनियों को उससे कोई तकलीफ होगी। लेकिन उनकी कमाई तभी बेहतर होगी जब जो मोटा खर्च करते हैं उनको वो कुछ और उनसे पैसे ले सकेगी।
अब जब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो दाम बढ़ाएंगे, तो जियो ने तो फिलहाल ऐसा ऐलान किया नहीं है, तो क्या ये भी इनको ध्यान में रखना होगा कि इनकी ये भी मुश्किलें हो सकती है इन कंपनियों को कि अगर हमने अगर थोड़ा डेटा बढ़ाया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो छिटक के चले जाएं जियो की तरफ?
अब आपके पास वो बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहा, सिर्फ 3 या 4 ऑपरेटर अगर BSNL को भी मिला दें तो 4 ऑपरेटर के पास आप बहुत ज्यादा आपके पास विकल्प नहीं है। ये तुलना कीजिए उस समय से जब देश में 13 ऑपरेटर भी थे 2008-09 के आसपास, 10 के आसपास, तो वो समय के बाद अब ये जो समय देख रहे हैं उसका यूं कहिए कि ठीक उल्टी हो गई है स्थिति। अब जिसको कहते हैं बाजार में प्राइसिंग पावर अब कंपनियों के पास है, उस समय वो प्राइसिंग पावर उनके पास नहीं था क्योंकि कंज्यूमर के पास बहुत सारे विकल्प थे।
टेलीकॉम जानकार आशुतोष सिन्हा बता रहे थे कि किस तरह से भारत में टेलीकॉम कंपनियां अपने दाम बढ़ाएंगी और ये किस हद तक आगे बढ़ा सकती हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कल इलाज के लिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए। इमरान खान सरकार उन्हें इलाज की अनुमति नहीं देना चाहती थी और सरकार का कहना था कि अगर जाना जरूरी है तो पहले 7 अरब रुपए का बॉन्ड भरा जाए, मगर नवाज शरीफ इसके लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उन्हें अनुमति कैसे मिली, उन्हें क्या बीमारी है? इन्हीं सवालों को लेकर आदर्श राठौर ने बात की BBC उर्दू संवाददाता तरहब असगर से।
नवाज शरीफ जो थे वो सजा काट रहे थे और उसके बाद नैब ने उनके ऊपर एक और तीसरा केस बनाया जिसकी वजह से उनको जेल से नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में मुंतकिल किया गया जो कि लाहौर का नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था। वहां पे ये कंप्लेंट सुनने में आई कि नवाज शरीफ उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट की और बार बार कंप्लेंट की कि हम इजाजत मांग रहे हैं उनके इलाज के हवाले से, हम देखना चाहते हैं उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो बार बार इस चीज की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन जब इजाजत उनको दी गई तो उसके बाद ये सामने आया कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल जो कि लाहौर का एक सरकारी अस्पताल है वहां पे उनको शिफ्ट किया गया। वहां पे उनका इलाज तकरीबन 5 से 6 हफ्तों तक जारी रहा जिसमें ये बताया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं उनको ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स में कमी आती है। और उसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड था गवर्नमेंट ने जो खुद बनाया था उन्होंने ही कहा कि इनको इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें इनको दिल की बीमारी भी है और शुगर भी है, किडनी के भी मसले हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो मर्ज है, जो एक्चुअल कॉज है जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं वो क्या है। और कुछ ऐसे स्कैन्स थे जो पाकिस्तान में, जो कुछ ऐसे टेस्ट मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में उनके हो सकते थे, जिसकी वजह से सरकारी मेडिकल बोर्ड ने उनको रेफर किया कि ये बरतानिया जाके लंदन में अपना इलाज कराएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त दी, उसकी समाअत के सुनने के बाद जो है जजेस ने ये, अदालत ने ये फैसला दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए 1 time परमिशन दी जाएगी ट्रीटमेंट के लिए, जिसके बाद उनकी ये जो मशरूत इजाजत थी जो कि हुकूमत देना चाह रही थी उसको नलिफाई करके अदालत ने प्रॉपर इजाजत दी कि आप 4 हफ्तों के लिए एक दफा जो है जाके अपना इलाज करवा सकते हैं।
नवाज शरीफ लंदन इलाज के लिए रवाना हुए, जानकारी दे रही थी BBC उर्दू संवाददाता तरहब असगर। और कार्यक्रम में अब वक्त है अखबार के पन्ने पलटने का। सृष्टि, आप अखबार पढ़ चुकी हैं, क्या छपा है आज के अखबारों में?
जी, तो सबसे पहले मैं एक ध्यान ले जाना चाहूँगी इंडियन एक्सप्रेस की खबर की ओर, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जो बता रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो पत्थरबाजी के आरोप में जम्मू कश्मीर में 765 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी गई है। और साथ ही इसमें बताया गया है कि 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और कानून व्यवस्था बिगड़ने की जो घटनाएँ हैं उसमें कमी भी आई है, ये इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं। दूसरी खबर मैं ले जाना चाहूंगी आपका ध्यान द हिंदू अखबार की, जिसमें एक सरकारी रिपोर्ट में, जो मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 2018 में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं और 17 मौतें हुई हैं। और इस रिपोर्ट को जिस तरह से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है उसमें ओवर स्पीडिंग को सबसे बड़ा कारण बताया है 2018 में 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान जो है वो सड़क हादसों में गंवाई है। जी, और सभी अखबारों ने एक जो JNU का मुद्दा है, जो हाल ही में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो फ़ी हाइक की गई थी, फीस में बढ़ोतरी की गई थी, उसे लेकर जो छात्र हैं वो दिल्ली की सड़कों पे कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई हिंदी अखबारों ने भी इसको अपने पहले पन्ने में लगभग जगह दी है। मैं बात इंडियन एक्सप्रेस की कर रही हूँ, इसने 5 खबरें लगभग JNU के बारे में दी है। सबसे पहली खबर बता रही है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, उनको एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था केंद्र सरकार की एक समिति ने, जिसमें वो नहीं पहुंचे, उन्होंने वो मीटिंग स्किप कर दी। दूसरा एक खबर है जो बताई जा रही है कि जो दिल्ली पुलिस है उसमें उस दिल्ली पुलिस ने 2 कंप्लेन रजिस्टर की हैं छात्रों के खिलाफ कि छात्रों ने उनके साथ बदसलूकी की है। JNU प्रशासन जो है वो हाईकोर्ट गया है अपने ही छात्रों के खिलाफ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने एडमिन ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे के अंदर प्रोटेस्ट किया है।
मेरे सामने भारत टाइम्स है जिसमें की सबसे बड़ी जो लीड खबर है कि वो ये है कि पर्यावरण पर संसद में बहस, आरोपों का स्मॉग छाया रहा, और जो तस्वीर है उसमें ये है कि सदन में मास्क लगाकर तृणमूल सांसद दिख रही हैं, और उनका कहना है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 9 भारत के हैं, ये चिंताजनक और शर्मनाक है। ये सबसे बड़ी खबर है नवभारत टाइम्स की।
जी, और साथ ही में सबरीमाला मंदिर में एक 12 साल की बच्ची को प्रवेश करने से रोका गया है, उस बच्ची की जो खबर है वो हर अखबार ने अपने पहले पन्ने में, दूसरे पन्ने पर उसको दी है। साथ ही में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षे, जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण एक तरह से स्वीकार कर लिया है, और हो सकता है वो 29 नवंबर को भारत की यात्रा पर हों, और ये उनकी एक पहली विदेश यात्रा होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि। और चलते चलते एक खबर और जिक्र कर लें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन की जो कवायद है वो तेज है। ये जनसत्ता के हिसाब से है कि शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर के विरोध की खबरों के बीच राजस्थान के एक ऐसे सरकारी स्कूल की बात, जहां मुस्लिम बच्चों ने संस्कृत पढ़ने में गजब की रुचि दिखाई है। इस विद्यालय में लगभग 200 बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं और उसमें भी लड़कियों की संख्या अधिक है। जब ये बच्चे संस्कृत के जटिल श्लोकों का सटीक उच्चारण करते हैं तो शिक्षक भी प्रसन्न हो जाते हैं। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
उस घनी बस्ती की तंग गलियों से निकलकर जब ये बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं और पढ़ने बैठते हैं, माहौल संस्कृत के श्लोकों की वाणी से निनादित हो जाता है। वे जिस परिवेश और परिवारों से आते हैं वहाँ संस्कृत का कभी बसेरा नहीं रहा। इन बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इन बच्चों से बात करो तो वे संस्कृत में बोलने लगते हैं। इन बच्चों के माता पिता मेहनत मजदूरी कर जिंदगी बसर करते हैं। 8वीं कक्षा की मान्या के पिता बारदाने की सिलाई करते हैं, लेकिन वो शिक्षक बनना चाहती है।
मम नाम मान्या, मम पितुर नाम एहसान, मम मातुर नाम शबाना। मुझे संस्कृत पढ़नी अच्छी लगती है और मुझे ना संस्कृत पढ़ने में सरल लगता है। सर, मैं संस्कृत टीचर बनना चाहती हूँ संस्कृत की। संस्कृत अच्छी लगती है, ज्यादा उसके अंदर श्लोक वो आते हैं ना, मतलब समझने में भी अच्छा लगता है। विद्या ददाति विनयम् विनयातायाति पाठताम् पाठताम्।
सकड़ी गलियां, छोटे छोटे मकान और अपने परवरदिगार की बंदगी में डूबी इंसानियत। लेकिन शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए तो तालीम ही इबादत है। स्कूल के प्रिंसिपल वेद निधि शर्मा कहते हैं बच्चों के माता पिता पढ़ाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं।
यहाँ की जो लोकेलिटी है उसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं और उनके बच्चे भी राजकीय संस्थाओं के कारण से यहाँ पढ़ने आएंगे ही आएंगे, लेकिन पढ़ने आने के साथ साथ उनका जो विचार है वो उनको अच्छा लगता है। इसमें संस्कृत की एक टेक्स्ट बुक अलग आती है, हमारे घर भी जाते हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं, उनको बुलाते भी हैं, उनको बिल्कुल प्रेम से अध्ययन कराते हैं। शिक्षण व्यवस्था यहाँ संपूर्ण रूप से अच्छी चलती है, इसलिए समस्त अभिभावक गण वो हमें बच्चे देते हैं।
स्कूल में साधन सुविधाओं की किल्लत है, कुछ कमरों की बुनियाद रख दी गई है लेकिन अभी निर्माण होना बाकी है। शिक्षक कहते हैं इन सब के बीच बच्चों की जिंदगी में तालीम की मजबूत नींव रख दी गई है। इन बच्चों में सातवीं जमात की परवीन कहती है,
मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छी लगती है। संस्कृत में मुझे श्लोक आते हैं, गीत आते हैं और पाठ पढ़ना आता है। घर पे सब ठीक ही कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने ये सब सीखने स्कूल में जाके। मैं भविष्य में एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ।
स्थानीय विधायक अमीन कागजी ने स्कूल की इमारत के लिए अपने कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। ये बच्चे जब श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है गोया कोई पंडित शास्त्री देवभाषा में मुखातिब है। संस्कृत के शिक्षक कोमल शर्मा बच्चों की ललक देखकर अभिभूत है।
ये बिल्कुल अलग माहौल से है, इन बच्चों को संस्कृत पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गा के और संस्कृत का श्लोकों का बार बार पाठ करवा के इनको अच्छे से याद करवा देती हूँ और ये संस्कृत में रुचि भी लेते हैं। बच्चा जब रुचि नहीं लेगा तो याद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों की रुचि इतनी है संस्कृत के प्रति कि फटाफट इनको श्लोक याद हो जाते हैं, गीत याद हो जाते हैं। तो ये रुचि लेकर संस्कृत को पढ़ते हैं तो मेरी भी रुचि और इनको पढ़ाने की ज़्यादा करती है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के प्रति इनको जागरूकता लगाव इनका पैदा किया जाए।
हर जबान में एक मिठास है, भाषा कोई भेद नहीं करती, वो फासलों की दीवार भी खड़ी नहीं करती, लेकिन जब कोई जबान में तलखी लाता है भाषा बेबस हो जाती है। पर इसमें भाषा का क्या कसूर है? नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात बॉक्सिंग की। अमेरिका में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय मुक्केबाज और नॉकआउट किंग के नाम से मशहूर विजेंद्र सिंह अब अपनी अगली फाइट के लिए तैयार हैं। अब उनकी फाइट 2 बार के कॉमनवेल्थ सुपर मिडिल वेट चैंपियन घाना के चार्ल्स एडमू के साथ होगी। विजेंद्र और एडमू के बीच 10 राउंड का ये मुकाबला 22 नवम्बर को खेला जाएगा। और अब बात बैडमिंटन की। फॉर्म में वापसी करने वाले किदाम्बी श्रीकांत मंगलवार यानी कल से क्वालिफायर के साथ शुरू हुए कोरिया मास्टर्स विश्व टूर सुपर 300 टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे, जबकि साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट से हट चुकी हैं। इस साल इंडिया ओपन के फाइनल में जगह बनाने के बाद से श्रीकांत का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछले हफ्ता हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद दुनिया के इस पूर्व नंबर एक खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा होगा। साइना के हटने के बाद वुमेन सिंगल्स में भारत की ओर से कोई और नहीं होगा। मेंस सिंगल्स में दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी समीर वर्मा को पहले दौर में शीर्ष वरीय चीन के शी युकी से भिड़ना है, जबकि उनके बड़े भाई सौरभ वर्मा को क्वालिफायर का सामना करना होगा। और अब टेनिस की बात। राफेल नडाल पिछले सप्ताह खेले गए ATP फाइनल्स के ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ने के बावजूद ATP की सोमवार को जारी साल की आखिरी रैंकिंग में शीर्ष पर रहने में सफल रहे। ये 5वीं बार है जब नडाल ने साल का अंत शीर्ष खिलाड़ी के रूप में किया है। जोकोविच के पास हालांकि शीर्ष पर पहुंचने का मौका था, लेकिन वो लंदन में खेले गए ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। खेल समाचारों में आज इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी ज्योतिका सिंह। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से।
BBC समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि वो ईरान को लेकर उन रिपोर्टों की पुष्टि कर सकती है जिनके अनुसार 5 दिनों से हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 106 लोग मारे गए हैं। बोलीविया के एल अल्टो शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 3 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। स्वीडन के विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांज पर 2010 में लगाए गए बलात्कार के आरोपों की जांच को रोक दिया है। ब्राजील के एक जज मार्सेलो ब्रेट्स ने पैराग्वे के पूर्व राष्ट्रपति होरासियो कार्टेस के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में। आज स्टूडियो संभाला था कपिल देव सिंह ने। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।